संतप्त मान से शांत हों, जिनके गणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 319 और 320वीं गाथा है। समय सार शास्त्र में 453 पेज पर अपना नया जयपुर से छपा समय सार है ना, उसमें 453 पेज पर सबसे ऊपर कलश है और उसके नीचे दो गाथाएं हैं। तो कलश है वो उत्थानिका का कलश है, जो बात गाथाओं में कही जाने वाली है वही बात उस उत्थानिका के कलश में कही है। इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रकरण है कि अपना भगवान आत्मा जो संपूर्ण विशुद्ध रूप ज्ञान है उस स्वरूप है। जैसे ऊपर ही कलश है बसंत तिल का है ना, आपकी पुस्तक में ज्ञानी करोति न
भेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत् स्वभावं, जानन् परं करण वेदनयोरभावा, शुद्ध स्वभाव नियत सही मोक्त एव।
ज्ञानी जी बहुत सरल कलश है। ज्ञानी करोति ना, ज्ञानी करता नहीं है काय का, तो प्रकरण पीछे से चल रहा है कर्म बंध का अथवा सात तत्वों का, कर्म आश्रव का, बंध का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का, सब का सात तत्व है ना। तो ज्ञानी आत्मा इनका कर्ता नहीं है और ना वेदयते और ना उनको भोगता है। काय को कर्मम, कर्म को, कर्म माने ज्ञानावरण आदि कर्म भी ले लो और मोहराग देश रूप भाव कर्म भी ले लो तो वे बंध है, भाव कर्म में आश्रव बंध आ जाएंगे। और फिर आगे तो इन्होंने संबंध निद्रा और मोक्ष तक को ले लिया। कहते ज्ञानी ना करोति और ना वेदयते और ना उनको वो भोगता है और ना वो करता है। केवल अयम किल तत् स्वभावम, इसका स्वभाव है उन्हें जानना, इसलिए मात्र उन्हें जानता है। तो अब कहते ठीक है, उन्हें जानता तो है ना। अपन कहते तीन संबंध हैं हमारे उन पदार्थों से, परमन कर्म, यहां मुख्य रूप से कर्म लिया तो उसने आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष और ज्ञानावरण आदि कर्म भी और मिथ्यात्व आदि कर्म भी सब ले लेना। तो इनके साथ एक करने का और एक भोगने का और एक जानने का, तीन प्रकार के संबंध हैं। शास्त्रीय भाषा में एक को कर्म चेतना कहते हैं, दूसरे को कर्म फल चेतना कहते हैं और तीसरे को ज्ञान चेतना कहते हैं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये दोनों चेतनाएं अज्ञान चेतना है। यानी चेतना दो प्रकार की, एक ज्ञान चेतना एक अज्ञान चेतना। फिर अज्ञान चेतना के दो भेद, एक कर्म चेतना एक कर्म फल चेतना। तो तीन चेतना हो गई, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। बस जो करूं 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 ऐसे जो विकल्प वाला भाव है वो कर्म चेतना वाला है, और भोगूं 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 ऐसा जो भाव है वो कर्म फल चेतना, कर्म के फल को में ही उसे रस है, उसको भोगता है। और न करने का भाव है न भोगने का भाव है, मात्र जानने का भाव है। अभी हम इसको लोक में देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं महिलाओं में खासकर कि उन्हें खाना बनाने में, बनाना माने करना, उसमें जितना रस है उतना रस उसके खाने में नहीं है। पति बच्चे खाएं और भी खुश हों उसमें बहुत खुश होती हैं, तो उन्हें मिले ना मिले उनके मन का हो चाहे ना हो उनकी परवाह नहीं है। पेट तो सभी भरते हैं तो वे भी खाती तो होंगी, लेकिन फिर भी उनका जितना रस मन कर्तृत्व में है, करने में है, उतना भोगने में नहीं है। ख्याल में नहीं ना, पुरुषों में भी ऐसी कई बातें देखते हैं कि शिविर की व्यवस्था कर रहे हैं, आगे से पीछे से दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, उनको उसमें सब उसके फिर बढ़िया से बढ़िया हो, एक करने का बहुत भाव है। और फिर उसमें काय के लिए किया कि सबके प्रयोजन होंगी, कक्षाएं होंगी, तो वह जब प्रयोजन होता है तब उनका आराम का समय होता है। अब सब लोग अपने सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले सुना रहे, अब अपन को इस वक्त कोई काम नहीं है, एक घंटा शांति है, जब तक सो लो। ऐसे बहुत लोग होते हैं इस जगत में, वो कर्म चेतना की प्रधानता वाले हैं। ये तो मैंने शिविर का उदाहरण दिया है, ऐसे ही घर के कामों में देख लो, बंबई में घर पर बहुत बढ़िया एयर कंडीशन मकान बनाया है, एक एक चीज को इतनी बढ़िया बढ़िया सजा के रखी है, और जो सेठ जी वहां कपड़े का व्यापार है ना, मूल जी जेठा मार्केट करके व्यापार में जाओ, उसमें इतनी भीड़ है, एक एक आदमी को 2x2 का एक पाटिया होता है, 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा, सिर्फ उतनी सी जगह है, और उसमें बैठते हैं सेठ जी दिन भर, और चारों तरफ इतनी भीड़ है, इतनी चैचा पे पे आवाज होती है, अपन वहां तो खड़े नहीं रह सकते। उसी वजह से फोन से बात करते हैं, और बस थोड़े से नमूने के लिए माल रखा रहता है, माल तो सब गोदामों में होता है, और वो वहां पर वो दिखा दिखा करके बस ऑर्डर लेते हैं, बेचते हैं, बस एक उनका काम है। तो सुबह से शाम तक वहां एयर कंडीशन होने का सवाल ही नहीं है, अपने पास जगह ही उतनी है, पसीना आता रहता है, चलाते रहते हैं, तो लेकिन उन्हें कमाने में रस है। और महिलाएं घर पे आराम से एयर कंडीशन मकान में पड़ी रहती हैं, भोगती रहती हैं, सब बच्चे महिलाएं सब खूब सुख से रहें, खूब खाएं पिएं, फिर थक्के आते हैं तो आकर के सो जाते हैं, और फिर सब लोग अपने घूमने बाजार जाते हैं, खाना पीना, और बाजार में खाना पीते, सिनेमा देखना, ये सब करते रहते हैं। वैसे पुरुष हैं पर वो कर्तृत्व बुद्धि वाले हैं, करना 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 है, जिस दिन छुट्टी होती है ना उनका दिन नहीं कटता है। तो ऐसे लोग जो कर्तृत्व की भावना की प्रधानता वाले, जो कर्म चेतना की प्रधानता वाले लोग हैं, वैसे तो जिन्हें कर्म चेतना है उन्हें कर्म फल चेतना भी है, कर्म फल चेतना उन्हें कर्म मुख्यता की बात है, और कर्म फल माना गया भोगने की। ऐसी प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं, अजगर करे न चाकरी पर पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बस अजगर ने तो कहीं कहीं नौकरी नहीं की है? और पक्षियों ने कहीं कोई काम नहीं किया, भगवान सबकी व्यवस्था करता है। ऐसा मलूकदास कवि कहते हैं कि सब दाता भगवान राम है, हाथी को मनभर और चींटी को कनभर की व्यवस्था वो करता है। ये भोग की प्रवृत्ति की प्रधानता वाले हैं कि जो मिले उसे भोग लो, उतने से काम चलाओ, संतुष्ट रहो, है ना। अजगर जो होता है ना, यदि उसे करवट बदले बिना काम चल जाए तो वो करवट ही नहीं बदलता है, इतना भी कर्तृत्व उसे पसंद नहीं है, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है उसे भोगते रहते हैं। वैसे असैनी पंचेंद्री तक, एक इंद्री से लेकर, कर्म फल की चेतना प्रधानता वाले जीव होते हैं। पर उन्हें क्या है, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है भोगना है, पेड़ हैं, खड़े हैं, बस उन्हें क्या करने का तो कुछ है ही नहीं। अब जो गर्मी आए तो धूप आए तो धूप में खड़े हैं, उसे भोगना है, ठंडी हवा आए तो उसे भोगना है, भयंकर सर्दी पड़े तो उसे भोगना है, ओले पड़े तो उसे भोगना है, माने अनुकूलता का वातावरण बने तो भी वहीं खड़े रह के भोगना है, और प्रतिकूलता का बने तो भी भोगना ही है, वहां करना यानी कुछ प्रयत्न पूर्वक, वो कुछ नहीं करे अभी सर्दी है तो अब थोड़े अंदर चले जाए, यहां बाहर में क्यों खड़े रहें, धूप में क्यों खड़े रहें, छाया में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बस खड़े नहाए। तो इस तरह के जीवों की प्रवृत्ति जगत में देखी जाती है। तो दो चेतना हो गई, एक करना और एक भोगना, और तीसरी चेतना है जानना। वो कहते हैं किसी को, खासकर ज्ञानी जनों को, सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को ना तो पर में कुछ करने का विकल्प होता, विकल्प तो होता है तो गुणस्थान की भूमिका के अनुसार, लेकिन श्रद्धा के लेवल की बात है, ना उन्हें कर्म चेतना होती है, ना उन्हें कर्म फल चेतना होती है, ना उसका उसका फल भोगने में रस है और ना कर्म करने में रस है। ऐसा पुण्य तो करो ना स्वर्ग में चले जाएंगे, ये क्या है स्वर्ग में, ठीक है मत करो कुछ, अब तुम पाप नहीं करोगे ना तो स्वर्ग में तो चले ही जाओगे, चले जाएंगे, तुम्हें बहुत भोगना पड़ेगा, भोग नहीं, जहां जो होगा हम तो उसे जान लेंगे, वो कहते हैं उसके ज्ञाता स्वभाव वाले हैं। अभी अपने अध्यात्म जी लोगों में एक और चलेगा, हम जानता भी नहीं है पर को, अभी कम से कम ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, मतलब सर्वश्रेष्ठ अधिकार, असली आत्मा की बात बताने वाला, जो आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है पर का, वो भी कहता है जानता तो है, ज्ञान तो चेतना तो इसका लक्षण है, उपयोग लक्षण चेतना लक्षणो जीवा, तो फिर कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना नहीं और ज्ञान चेतना नहीं, तो फिर अजीव हो जाएगा। तो ज्ञानी के ज्ञान चेतना तो होती है, अरंध भगवान के भी होती है, सिद्ध भगवान के भी होती है, क्या तो मतलब जानना तो स्वभाव है, तो आप कहो ठीक है जानना स्वभाव है तो जान लेंगे अपने को, पर को हम तो पर को जानने का निषेध करते हैं, यद्यपि यहां जो स्वभाव में बैठे हैं ऐसी वृत्ति वाले एकाध दो चार ही लोग होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं है, बाकी जो नए नए विद्यार्थी आए हैं बेचारे उनको तो अभी कुछ पता भी नहीं है क्या है दादा, है ना, क्या आत्मा पर को जानता ही नहीं है, ऐसा सुना हुआ कभी कान में पड़ी होगी बात तो कहीं कहीं गूंजती होगी, लेकिन ये कहते यहां पर प्रकरण बिल्कुल वो बात भी है, यहां नहीं है वो, इतना नक्की है, यहां तो कहते हैं कि वो कर्ता भोक्ता नहीं है और जानने देखने वाला माने ज्ञाता दृष्टा है, यहां तो जानने की स्थापना की है और अपने आत्मा को नहीं, कर्म कर्म के बारे में है ना, जो ज्ञानी करोति न वेदय ते च कर्म, कर्म को न ज्ञानी करता है न भूलता है, जानाति केवलम, सिर्फ उसे उसी की बात है जान, अरे आप अपने को जान लेंगे कि नहीं, अभी कर्म की बात है, माने दिव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म संबंध आश्रव संवर निद्रा मोक्ष, इनको न करोति न भुंगते, न करता है न भोगता है, केवलम अयम जानाति, केवल यह जानता है, ऐसा क्लियर लिखा ना, ऊपर की पंक्ति पढ़ो कितनी सरल है, अभी जो पहली साल विद्यार्थी हुए हैं और तो थोड़ी भी लोक सिद्धांत को हमने पढ़ी होगी उनकी समझ में आ जाए, ऐसी पंक्ति है जी, कितना सरल, अमरचंद का बहुत कम लिखते हैं, देखो ज्ञानी करोति न, ज्ञानी करते नहीं है, न वेदयति और न वेदयते न भोगते हैं, का किसको कर्मम कर्म को, जानाति केवल केवल जानते हैं, तत्स्वभावम उसके उस स्वभाव को जानते हैं, तो क्लियर है ना ऊपर की पंक्ति में, तो इसमें कोई ऐसे बड़े पंडित की जरूरत नहीं है, ज्ञानी करोति न च वेदयते च कर्म जानाति केवलमयम् किल तत्स्वभावम्, क्लियर है ना एकदम, जानन परम करण वेदन और अभावात, कहते वो जानता हुआ ज्ञानी पर को करण और वेदन इन दोनों के अभाव से, करण वेदन हो करण माने करना और वेदन माने भोगना, इन दोनों के अभाव से शुद्ध स्वभाव नियतम, अपने शुद्ध स्वभाव में ही नियत है वो, तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, तो शुद्ध स्वभाव में ही नियत है, पर ऐसा जीव मुक्त एव है, वो तो मुक्त ही है, मान चौथे गुणस्थान वाले जीव की बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं सही मुक्त एव है, वो तो मुक्त ही है, उसे मोक्ष होना नहीं है, ठीक है, सही मुक्त एव है, वो तो मुक्त ही है, अब ये जो कलश में कहा है ना, अब यही गाथा में है, पढ़ो गाथा भैया।
उवै न विवेयै नानी कम्मायिं बहुपयारायिं जानै पुण कम्म फलम् बन्धम् पुण्यम् च पावम् च दिट्ठि जैव नाणम् अकारयम् तः अवेदयम् चैव जानय बन्धमोकम् कम्मुदयम् निज्जरम् चैव।
धन्यवाद भी पढ़ लो।
ज्ञानी करे भोगे नहीं बस सभी विध विध कर्म को वह जानता है कर्म फल बंद पुण्य एवं पाप को ज्यो दृष्टि त्यों ही ज्ञान जग में है अकारक अवेदक जाने कर्म के बंद उदय मोक्ष एवं निर्जरा।
ये बहुत सरल है ना, देखो ज्ञानी करे भोगे नहीं नवि कुंभई नवि बेयई रानी रानी न कुंभई न बेयई न करता है न भोगता है क्या किनको बहु पयारई कम्माई बहुत प्रकार के कर्मों को जाने ही पुण्य कम्म फलम और वो उन कर्मों को कर्म के फल को बंध को पुण्य को और एवं पाप को इन सबको जानता है। और अब दिट्ठी जहैव नाणम जैसी अपनी जो आंख है ये अकारयम अवेदयम च ये पर पदार्थों को करती नहीं है और भोगती नहीं है। क्या मतलब है? आंख से अपन ने जलती हुई अग्नि को देखा तो अग्नि में कंडे जल रहे थे तो आंख ने उन्हें देखा तो आंख ने उन्हें जलाया नहीं है, जलाने का काम नहीं किया है और उस आग जलते हुए कंडे को भोगा नहीं है यानी उसे गर्मी भी नहीं लगी। वो आंख ने ना की है उस अग्नि को और ना उसने उसे भोगी है ना। जैसे कहते हैं पंखा ने ऐसे उसे जलाई और उसने लोहे के गोले ने भोगी एकदम लाल हो गया ना, अथवा उस लकड़ी ने जो जली उसमें उस कंडे ने वो जल गया उसने भोगा उसे। हवा ने जलाया और कंडे ने ईंधन ने भोगा और ज्ञानी ने आंख ने और उसे सिर्फ जाना है। ऐसे ही कर्म को पुण्य को पाप को ये सब गिना दिए ना ऊपर हैं और नीचे बंध को मोक्ष को निर्जरा को सब आ गया ना गाथा में सातों तत्व आ गए ना कि इन सब को ज्ञानी न करता है न भोगता है मात्र जानता है। यदि भोग है तो उसे सुख दुख जो होगा होना चाहिए और यदि करे तो उसे कर्तृत्व में उसका तुमने कोई वो होना चाहिए लेकिन वो तो आंख तो को तो कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे एक ज्ञानी शहर गया था जैसा भाव से जाता है तो कहते हम जानेंगे नहीं कि क्यों मैं क्यों नहीं जानूंगी कि हमको किसी को जलता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता हमें बहुत दया आती है ख्याल में आई ना। तो फिर वही मतलब है तो फिर क्या कर तुम नहीं दया आ रही तो उसे बचा लो। अभी अपन ने कंडे को अजीब को बताया था अब किसी जीव को जलते हुए देखा हमसे तो नहीं देखा जाता और उसे कहे डंडा मार के लाओ तुम ये आग लगाओ उसी से आग लगवाए अपने आदमी और उसी से वो देख देख के दया आ करके भोग है। ये तो आप जानते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे ले जाते हैं श्मशान में जलाने के लिए और उसको बिछा देते हैं तो उसके ऊपर से सब रख देते हैं लेकिन उसमें आग लगाने का काम कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। इतना काम तो सब करें यहां से ले जाएं वहां पर ठटरी बनाएं ठटरी पर रखाएं लेकिन जलाने का काम उसके घर वालों को खासकर बेटे को ही करना पड़ता है। और बड़ा हो तो बड़ा बेटा करता है, नहीं हो तो दूसरा करे, जैसा भी करे, और बेटा नहीं हो तो फिर कोई भांजा करे, फिर मतलब कोई भाई करे। तो क्यों? क्योंकि भविष्य में कभी कोई ये ना कह देगा हमारे बाप को जिंदा जला दिया इनने। पहले उसको देखने की भी बहुत व्यवस्था करते हैं, आजकल तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी लेते हैं, और पहले जमाने में भी मुंह पे पानी की छींटा डाल डाल करके रास्ते में दो तीन जगह जो छटली को रख करके तो छींटे डाल करके देखते थे, क्योंकि ऐसा कई दफे हो जाता है कि वो आदमी बेहोश हो जाता है, अपन समझते हैं मर गया, घर वाले मानते ही नहीं है कि मर गया, और उसको जब घर से उठाते हैं ना लाश को, तो पत्नी को दिखाते हैं पानी की छिड़का डाल डाल के, देख ले कि ये मर गया नहीं, मतलब क्योंकि उसको राग होता है तो वो कहते नहीं नहीं बनी मरे को उठा ले गए थे, और ऐसे ही को जला दिया। फिर रास्ते में एक जगह उसे रख करके फिर उसको फिर देखते हैं, वो बेटों को बच्चों को दिखाते हैं ख्याल भाई ना, फिर उसको जलाने के पहले फिर एक दफे फिर अच्छी तरह से कन्फर्म हो जा, और अब तू ही मान ले और तू आग लगा, कौन कौन लगा कल के किसी ने केस कर दिया कि हमारे पिताजी को ऐसे ही बेहोश कर दिया और लेकर के जला दिया। तो जैसे अब वो घर वाले भोग रहे ना, कर रहे और भोग रहे, तो अब ऐसे जो सामान एक अखबार वाला है वो फटाफट फोटो ले जाता है अखबार में ले जाता, अब ये देखा मैंने ये देखा बताता रहता है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, बताता बस देख गया जाता दिखता शहर भाव से, फिर दूसरे काम में लग जाता है, चाय पीने लगता है, क्यों सब चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है। तो ये कहते हैं कभी वो ज्ञानी हमें नहीं देख सकते तो तुम भोगने लग गए बेटा, फिर उसे हमको नहीं देखा जाता, हम तो मुंह फेर लें, तो इसका मतलब ये है कि तू उसका कर्ता भोक्ता बन रहा है। तुम ये नहीं कहते तुम, हम तो कहते तुम जान लो जानो देखो, तो वो कहता नहीं हम पे नहीं देखा जाता, माने जब तुम देखते हो तो तुम भोगने लगते हो उसे, क्या उसके वियोग के दुख को भोगने लगते हो। तो अब यहां कितनी कठिन परीक्षा की बात है कि न जानने से निषेध करना, जानने के निषेध करने से अपने ज्ञान स्वभाव का निषेध हो गया। तो ऐसा करें कि घर वाले बहुत रोते हैं और बहुत दुखी होते हैं, तो ऐसा करो कि सबको एक बेहोशी की दवा दे दो, पत्नी को और बच्चों को, और फिर ले चलो आगे अपन सब जला देंगे। ऐसा कर सकते हैं? अरे वे बेहोश हो गए हों, कौन पत्नी बच्चे, तो उन्हें होश में ला ला करके दिखा करके और उनसे ही आग लगवाओ, ख्याल में आई ना, ये पद्धति है लोक में। इसके बाद में भी कुछ केस ऐसे हो ही जाते हैं, केस भी चल जाते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञानी क्या, ज्ञान का काम तो जानना है, तो जानने से इंकार करे इसका मतलब जानने के साथ वो भोगने लगता है, मैं तो इंकार क्यों करे, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा, तो इसका क्यों नहीं लगाएगा, कि ये मुर्दा है ना तो इसे क्यों नहीं जलाएगा, ये कोई जीव को थोड़ी जला रहा है, तो उसे वो मुर्दा लग ही नहीं रहा ना, वो तो जीव लग रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो कहते हैं कि केवल जानाति अयम, इनको सबको जानता है, और ऐसा जीव उस करने और भोगतृत्व से मुक्त ही है, ना उसे करना है कुछ ना उसे भोगना है, तो वो तो अपना आत्मा के परिणामों को करता है, अपने आत्मा के परिणामों को भोगता है, तो उसे सुख दुख होने का सवाल कहाँ है, उसे सुख दुख होने का कोई सवाल नहीं है ना। अभी जो अपना टीवी पे दिखाते हैं कितनी बाढ़ आ रही है गुजरात में, कहीं क्या हो रहा कहीं क्या हो रहा, अपन देखते हैं कितना दुख होता है, सब दुख होता है ना, अब सब सिद्धों को नहीं देखने की सुविधा नहीं है, अपन तो चाहो तो टीवी बंद कर लो, क्या अखबार नहीं पढ़ो, उन्हें नहीं है ये सुविधा, फिर वहां बैठे बैठे अनंत काल तक नरकों में जितने दुख दिए जा रहे दुखी हो रहे जीव, और उनमें अनंत भव के उनके माँ बाप बाल बच्चे और पत्नी और पति सब होंगे क्या, और वो जानते होंगे कि जो हमारे घर में माता पिता रहे हैं और ये नरकों में भी इतने डंडे खा रहे इतनी दुख भोग रहे हैं क्या, तो उसको कितना दुख होता होगा, नहीं देखे, लेकिन नहीं देखने की सुविधा नहीं और दुखी नहीं होने की शर्त है, देखें और दुखी नहीं हो। अरे इसके बिना तो एक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। अब कहते हैं डॉक्टरों को तो क्या है, ये तो चीरा लगाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, फिर चाय पीने लगते हैं, फिर चीरा लगाने लगते हैं, तो अपन को भी बहुत दुष्ट नजर आते हैं। अरे वो ऐसा नहीं करें और उससे भी प्रभावित होने लग जाएं तो भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन देख नहीं सकते, उसके घर वालों को खड़े कर दो तो बेहोश हो जाए ना फिर, तो उन्हें पहले वीतरागी बनना पड़ता है। कि उनको जो कुछ भी हो, मरे जिए कितनी दुख हो गए, और उनको ग्रंथ मात्र भी वे उससे प्रभावित नहीं हो, उसके बिना तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नवी कुंडवई नवी बेयई, नहीं करता है न भोगता है अनेक प्रकार के कर्मों को, और कर्म के फल को, बंधु को, पुण्य को, पाप को, बंधु को, मोक्ष को, उदय को, निर्जरा को, इन सबको जानता है। कैसे? जैसे दिट्ठि, जैसे दिट्ठि माने नेत्र, और प्राणम उसी आंख की तरह ज्ञान भी। ज्ञान का स्वभाव आंख की तरह है कि वो सिर्फ देखती जानती है, तो कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये मुर्दा है उसे देखें जाने का नहीं, वो जिंदा है इसे देखें हम। जो भी उसके सामने आए, आंख का काम है, आंख का मैंने आत्मा आंख के माध्यम से देखता है, यहां आंख को ही देखने का उदाहरण दिया है ना। तो ये सर्वशुद्ध भगवान जो आत्मा है उसका ऐसा स्वभाव है, और स्वभाव मात्र किल वस्तु, संवर अधिकार में आया है ना कि वस्तु किसे बोलते हैं, स्वभाव मात्र को, तो ऐसा उसका स्वभाव है और वो ही आत्मा है। दूध रोता है, धोता है, बिलखता है, दुखी होता है, करने को दौड़ता है, ये आत्मा नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। और वस्तु तो स्वभाव मात्र होती है, विकृति को तो वस्तु कहते नहीं है। तो ज्ञान मात्र वस्तु जो भगवान आत्मा है, उसका स्वरूप आंख जैसी परिस्थिति है। देखो जब इन्हें हिंदी पढ़ लिया ना, पर ज्ञानी करे भोगे नहीं, बस सभी विधविध कर्म को वह जानता है, कर्म फल बंध पुण्य एवं पाप को, ज्यों दृष्टि त्यों ही ज्ञान, जग में अकारक है अवेदक, जाने कर्म के बंध उदय मोक्ष एवं निर्जरा, इनको मात्र वो जानता है। मैं अपने वो है कौन से योगींद्र देव योगसार वाले, परमात्म प्रकाश और योगसार वाले, वो तो कहते हैं कि मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो जानने में आता है। मोक्ष होता है तो जान लेते हैं कि हो गया मोक्ष, तो अब आत्मा कुछ करता बढ़ता रहा कि नहीं रहा, तो कहते कथनचित करता है और कथनचित अकरता है। अब ये कथनचित करता और कथनचित अकरता का क्या मतलब है कि वो जानन क्रिया, वो भी तो एक काम है ना, उसका तो करता है वो, उस जानन क्रिया का करता है, उस कर्म को, निर्जरा को, बंध को, मोक्ष को, उदय को, करने रूप क्रिया का करता नहीं है और भोगने रूप क्रिया का भोगता नहीं है, वो तो सिर्फ जानन क्रिया का करता है। तो उन्हें जानने की क्रिया का करता है कि हाँ घबराओ मत, भली वे तो ज्ञान के गे बने हैं ना, उन्हें जाने इतना क्यों वजन दे रहे हो। कहते वो तो जानन क्रिया है ना, उसके करता है, वो जानन क्रिया अपनी है, भले ही वो जानने में वो आ रहे हो कि मेरे रूमाल को मैं जान रहा हूं, तो रूमाल को मैं जान रहा हूं तो मैं रूमाल का कर्ता कैसे हो जाऊंगा। रूमाल को जो जान रहा हूं, क्रिया तो जान रहा है, तो जानन क्रिया का करता हूं, तो चाहे रूमाल को जानू, चाहे कर्म को जानू, चाहे बंध को जानू, चाहे संवर को जानू, चाहे निद्रा को जानू, चाहे मोक्ष को जानू, तो मैं तो जानन क्रिया का करता हूं, तो मैं ज्ञान स्वभावी हूं, पर के मामले में तो अपने अपने को भी मैं जानता हूं, कौन कहते मना करता है, लेकिन यहां तो इनके बारे में बात चल रही। वो कहते हैं कि अब ये किसकी बात है कि जिनको जिस भूमिका में करने का और भोगने का भाव आ रहा है। और जरा कठिन भाषा में बोलूं, कठिन तो क्या है, समझने में तो सरल है, स्वीकार करने में कठिन है कि पर पदार्थों को करूं और भोगूं, समझे ना। कहते ये करूं और भोगूं तो करने और पर को, करने और भोगने रूप भाव का कर्ता और भोगता नहीं है वो। अब कहते अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में ऐसा भी अज्ञानी है और अज्ञान अवस्था में है, ऐसा दो तरह के शब्द आते हैं ना, तो क्या अर्थ है उसका, बहुत बारीक फर्क है। अज्ञानी हमने जीवों को दो भागों में बांट दिए, जे ज्ञानी है और जे अज्ञानी है, तो जे करते भोगते हैं और जे करते भोगते नहीं अकेला जानते हैं। ऐसे गांव तो बसे नहीं है ज्ञानी अज्ञानियों के, अलग अलग ऐसे गांव तो है नहीं। तो फिर ऐसा है कि ये वो ही जीव अज्ञान अवस्था में उनको कर्ता और भोगता है और ज्ञान अवस्था में उनका कर्ता और भोगता नहीं है, केवल जानन क्रिया मन ज्ञान जानन जानता है, जानन ज्ञान क्रिया का करता है। तो वो एक ही जीव पे दोनों चीजें घटित हो गई ना, ये अलग अलग गांव बसाने की क्या जरूरत है। देखो जैसे अपने दिगंबर श्वेतांबर थानकवासी तेरापंथी बीसपंथी ऐसे अलग अलग हैं, भले ही इनके भी गांव तो अलग अलग नहीं बसे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हैं तो मंदिर तो इनके अलग अलग हैं ही क्यों। तो जब मैं पंडित टोडामल पर पीएचडी कर रहा था तो मैंने उन्हें बताया कि जैनी चार प्रकार के होते हैं, निश्चयाभाषी व्यवहाराभाषी उभयाभाषी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या ऋषियों में चार प्रकार के होते हैं। तो वो हमारे प्रोफेसर पूछते थे इनके कहीं गांव बसे हैं, ऐसा नहीं समझ रहे मूर्ख थे, बहुत बुद्धिमान थे। वो कह रहे थे कि ये तो जैसे 363 मत कल्पना में है, कल्पना में इतने इतने प्रकार का अज्ञान हो सकता है ऐसा उन्होंने बांटा है, ऐसे हम बता नहीं सकते हैं कि जे जे हैं जे जे हैं। तो निश्चयाभाषी हम यहीं सब बैठे, इन्हीं में से निश्चयाभाषी हैं, इन्हीं में व्यवहारावासी हैं, इन्हीं में उभयावासी हैं, इनमें कोई सम्यक के सन्मुख भी हो सकता, कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकता, क्यों इन्हीं में है और आज वो है और कल ये है, वो बदलता भी रहता है। तो मैं उनसे कहा ऐसे थोड़ी गांव कैसे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं यही तो रिसर्च है कि एक तो ऐसे स्थानकवासी दिगंबर श्वेतांबर ऐसे जैसे जे अलग हैं, ऐसे ये जैनी ऐसे ऐसे प्रकार नहीं है जैनियों के, दोनों में प्रकार में अंतर समझ में आया कि नहीं आया। अरे कई मान्यताएं तो ऐसी होती हैं कि ऐसे तो मिल जाएंगे कि जो निश्चयवादी जो व्यवहारवादी अपन आपस में छांट सकते हैं किसी की थोड़ी थोड़ी परिणति देख के, लेकिन कई भेद तो इसमें ऐसे मिलेंगे कि वे आपको दिखेंगे ही नहीं। सम्यक के सन्मुख मान लो हैं तो जो तो पांच लब्धि से लो तो दिख भी जाएंगे, अब जो त्रिकाण लब्धि में बैठे हैं वे भी सम्यक के सन्मुख है ना, तो वे आपको देखेंगे कहां बैठे कौन, नवन कौन किसके घर के कोने में कहां बैठे हो और वो कर्ण लब्धि में चल रहा हो और जो मंत्रमूर्ति में सम्मत इसी हो जाए, वो जनौरा पीटता हुआ थोड़ी तुम्हारे पास आएगा, तू पीटना भी होगा तो बाद में पीटेगा कि पहले पीटेगा, उस वक्त तो उनको अपने में ही बैठा होगा ना कहीं भी, और एकांत तो लोग चुनते ही हैं। तो कहते साहब हैं कहीं हैं कौन है सत्य मुनि है क्या नहीं फलाने, अब हमें क्या बता, हम कोई सर्वज्ञ हैं जो हमसे पूछ रहे हो तुम कि नहीं है तो नहीं कह दो, ये कह दो हमने नहीं देखे, ये क्या नहीं तो जबरदस्ती हमसे निषेध क्यों करवाते हो। आगम में लिखा है कि अंतिम काल के अंत तक होंगे, तो हम मानते हैं आगम के वचन को, तो साहब कोई नहीं दिखता तो नहीं दिखता है हम तो ये भी मानते हैं, तो नहीं है तो भैया जो नहीं हो तो जो है उनसे काम चलाओ, कहता लोग कहते हैं। तो टोडामल जी ने मान लो क्या कहा कि मान लो अपना पति खो जाए और नहीं मिले, बहुत कोशिश करें नहीं मिले, तो फिर किसी दूसरे से काम चला है। भारतीय संस्कृति में हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि सब मरने का भी प्रमाण नहीं है और खबर ही नहीं है, मिलते भी नहीं है, तो ठीक है। बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, पड़ी है, होंगे कहीं किसी द्रव्य क्षेत्रकाल भाव में, न मानू कहां फंसे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, कहीं किसी गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया होगा है। हम मना भी कैसे कर सकते हैं, उनकी हम तेरहवीं भी कैसे कर सकते हैं, किया भी कैसे कर सकते हैं, जब तक वो उनका कोई प्रमाण नहीं मिले, न मरे मान सकते हैं और न किसी को दूसरे को मान सकते हैं उसके पति के रूप में। तो ऐसे ही कहते हैं टोडा मजी, कहते हैं कि हमें दिखते नहीं हैं तो हम किसी को मान लें, काम चला हमारा कौन सा काम अटक रहा है चलाने, क्या क्या बात करे मुनिराज ने, तुम्हारा कोई काम ही नहीं अटक रहा। अरे भाई देवसाज गुरु की श्रद्धा के बिना सम्मान दर्शन नहीं होता, तो चाहिए ना देवसाज गुरु कि भैया ये श्रद्धा तो तुम्हारे अंदर ही अंदर हो सकती है, ऐसा कोई सामने व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बैठा हो और तब तुम उसे मानो, तब तुम देवसाज गुरु के मानने वाले कहलाओ। वो देवसाज गुरु का सच्चा स्वरूप हम जाने और उसे माने के सच्चे देवसाज गुरु ऐसे ही होते हैं, बस हो गया मानना, समय समय के लिए पर्याप्त है इतना ऐसा मानना। क्या देवसाज गुरु की श्रद्धा, श्रद्धा मानोगे स्वरूप की श्रद्धा, किसी व्यक्ति विशेष की श्रद्धा थोड़ी, आज सर्वज्ञ नहीं है तो हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं हो सकती है? हम यही तो कहेंगे इस द्रव्य में और इस क्षेत्र में जहां हमने देखा है वहां नहीं है, लेकिन वो और सब जगह नहीं है, यदि हम कैसे कह सकते कि नहीं है। उसमें ऐसा लिखा है संबंध पत्र ने कि तुम कहते हो नहीं हो तो तुम ही सर्वज्ञ हो, क्यों कि तुमने सब जगह देख लिया कि नहीं है, तो सब जगह देख लिया उसी को तो सर्वज्ञ बोलते हैं। जब तक तुमने सब जगह नहीं देखा है तब तक ना हम हां कह सकते हैं ना हम ना कह सकते हैं। तो वजह से मानते नहीं, मानते नहीं, मानते नहीं देवसाज गुरु, क्या नहीं मानते हैं, असली सच्चा तो हम ही मानते हैं, जो सच्चा स्वरूप समझे वही सच्चा मान सकता है ना। किसी को गुरु मानना उसका नाम मानना थोड़ी है, किसी को सर्वज्ञ मानना उसका नाम मानना थोड़ी है। सर्वज्ञ माने ज्ञान का स्वभाव ऐसा सारे लोकालोक को जानना है, इसको समझना इसका नाम सर्वज्ञ को जानना है। हमारा धर्म इतना पराधीन नहीं है कि वो लोक में वो न हो तो हमें संबंध दर्शन नहीं, किसी अन्य द्रव्य के अस्तित्व से हमारे संबंध दर्शन का क्या लेना देना है बोलो। देखो अभी अपन टीका पढ़ते हैं, ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता और कर्म फल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। मिल गया, ठीक है ना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। देखो ये किसकी बात चल रही है कि जिसे करने का भाव नहीं है उसकी नहीं, और जिसे भोगने का भाव नहीं है उसकी नहीं, जिसे छह खंड जीतने का भाव है और छह खंड की विभूति को भोगने का भाव है ना। ऐसे किसी भी चक्रवर्ती भरत जी को बहुत परेशान कर लिया अपन ने, अभी बार बार नहीं कर रहे उन्हें क्यों बारह ही चक्रवर्ती ऐसे ही है ना, जितने होते हैं जो जो भी है, माने ये श्रद्धा की बात चलती है ना, तो तुम क्रिया पे देखने लगते हो, तुम भाव पे देखने लगते हो, तुम वो देखना चाहते हो चौथे गुणस्थान में जो छठवें सातवें गुणस्थान में होता है कि जो तेरहवें गुणस्थान में, क्योंकि छठवें गुणस्थान में भी करने का भाव भी आता है और भोगने का भाव भी आता है। क्यों अमृतचंदाचार्य कुंदकुंदाचार्य जैसे देखो समय साल लिखने का भाव आया कि नहीं आया है? और उसे लोग पढ़ें और सब लोग पढ़ करके थोड़ा सा समझते होंगे तत्व तो उन्हें प्रसन्नता होती होगी कि नहीं, तो भोगने का भाव भी हो क्यों। और ऐसा ही नहीं कि अकेला करने का भाव ही हुआ था, ये उस वक्त उनका योग और उपयोग उसमें लगा था, योग मैंने समझता था हाथ की क्रिया ऐसी ऐसी हो रही थी ऐसी हो रही थी और उपयोग ज्ञान भी उधर कोई लगा था यहां वहां नहीं भटक रहा था है ना। ऐसे जीव को ये कह रहे हैं कि वो उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, कर्ता तो है पर कर्ता नहीं है। इस दोनों कर्ता में अंतर समझ में आया? अभी बोर्ड होता तो मैं लिख के बता देता कराता, कर्ता तो है पर का और रकार ऊपर ताके और डबलता, कर्ता कर्ता तो है पर कर्ता नहीं है, भोगता तो है पर भोगता नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि भोगकर्ता भोगता होना वो श्रद्धा गुण की बात है और ये चारित्र गुण की विकृति की बात है। चारित्र गुण की है, देह की क्रिया की है, ये जो है ना सब जो लेना ना योग और उपयोग है वो सब लग रहा उसमें है ना। ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से, देखो वो चौथे गुण स्थान में इतना कर्तृत्व का भाव रहेगा फिर भी वो कर्म चेतना से रहित है, और इतना भोगने का भाव रहेगा फिर भी वो भोग क्या नाम कर्म फल चेतना से रहित है। अभी आप देखो ये उदाहरण ऐसे ऐसे आते हैं कि कभी कभी तो अपने को अंदर से ये ऐसा लगता है कैसे हो सकता है कि तू मेरे को नमस्कार कर, नहीं करे तो मैं तुझे चक्कर की गोली से उड़ा दूंगा। अब ऐसी होगी ना बात, फिर और कुछ क्या चाहिए तुझे को बोल, कि कुछ नहीं बस तू मेरे पैर छू, क्या नहीं छूता हूं तो अपनी हाथ गोली से उड़ा। अब भरत ने बाहुबली के साथ क्या किया, यही कहा कि तू मुझे राजा मान, मेरे पैर छू ले नहीं तो मैं तुझे अभी चक्कर चला दूंगा। और आपको मालूम है कि ये बड़े बड़े सम्मतियों का वर्णन शास्त्र में है, और उसमें ये कहा कौन से कदा हम तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं, बड़ा राजा छोटे राजा से कह रहा है तो तुम क्योंकि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे चढ़ाई कर दो। ये सब ऐसे भगवान महावीर की सगी मौसी चेलना को यही तो किया था राजा सैनिक ने, पहले कहा उनसे चुपचाप दे दो हमें, उन्होंने कहा नहीं देंगे हम क्या, क्योंकि वो बौद्ध थे जो जैन थे, हम विधर्मी को कैसे दे दें, तो उड़ा ले गया। फिर भगवान की सगी मौसी और हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं ना कि उड़ान लेने वाले ले जाने वाले भी कई जगह सम्मान दृष्टि मिलेंगे। चक्रवर्ती यही है, वो जिस राजा के पास जाते उसकी लड़की से शादी करते, उससे हजराना लेते नजराना लेते हैं, वो स्वीकार कर लेता तब आगे बढ़ जाते, तो वहीं छोड़ जाते लड़की को, तब आएंगे लौट के हम ले जाएंगे बुला लेंगे तब जब अयोध्या पहुंचे मैं तुम यहीं जाओगे खत्म बस खत्म ठीक है जहां 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 हरेक से करते हैं छोड़ते हैं करते हैं छोड़ते हैं हाथ करे कोई ऐसा तो बोलो मैंने ऐसी परिणति उसको शास्त्र ज्ञानी कह रहे सम्मान दृष्टि कह रहे अकर्ता भोक्ता कह रहे और ऐसा ही मुक्त ये वे वो तो मुक्त ही है उसे सिद्ध सेवा में बैठा दिया बोलो। ये बात भाषा में समझ में आना बहुत सरल है कठिन नहीं है, लेकिन अंदर में गले उतरना अच्छों अच्छों के बहुत कठिन है। वो हम जो सुनाते हैं ना कहानी किसी की वो तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन वही परिणति यहां सामने हो और उसे फिर हम ज्ञानी मानने को तैयार हों तब जाने। यहां तो किसी को हम ज्ञानी मानने के लिए तो उसको ऐसा बैठना पड़ता है वो बेचारा मुस्कुरा ही नहीं सकता है। गुरुदेव श्री रोचन करने में खूब खिलखिला के हंसते थे तो लोग इसी बात की आलोचना करते हैं कैसे संबंध इतनी खिलखिला के हंसते हैं। अरे भाई उनको जो बात समझा रहे हैं उसमें उनको आनंद अंदर से आ रहा है क्यों, तो अब आनंद प्रकट हो रहा है तो उसमें क्या गड़बड़ी हो गई, आज तो हम इतनी भी बात बर्दाश्त नहीं है हमें। मैं तो कहता हूं उन सम्यक दृष्टियों को जो अपने को सम्यक दृष्टि मानकर ऐसा नाटक करते हैं वो भी सम्यक दृष्टि की बाह्य परिणति कैसी हो सकती है उनका अभी उन्हें पता ही नहीं है। अभी वो एक नया मत चला है और वो भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है कि वो आत्मा के बीच के 8 प्रदेश होते हैं तो उन पर दृष्टि केंद्रित हो तो वो सम्मेलन होता है। तो आत्मा अखंड कहां रहा और ऐसे सारा आत्मा घूमता है ऐसा अब्बे स्थिर रहते हैं घूमते नहीं है। अरे भाई ये एक किताब ऐसी घूमेंगी पूरी तो इसमें से कोई ऐसी जगह रह सकती जो वो घूमेंगी नहीं। अरे वो बीच की जगह है वही बीच की यहीं रही पर इसको नहीं घूमना कहते हैं। नहीं तो ये द्रव्य तो अखंड है ना, यदि वो कुछ हिस्सा नहीं घूमे और कुछ हिस्सा घूमे तो दो टुकड़े हो गए, एक वो घूमने वाला और एक नहीं घूमने वाला। जैसे चक्की का पार्ट है ना तो नीचे वो होता है क्या बोलता कीला, इसमें एक तो कीला स्थिर रहता घूमता नहीं है, लेकिन वो कीला यदि ऊपर वाले पार्ट में हो तो और नीचे वाले पार्ट में लोहे के गड्ढा हो और उसमें वो घूमता है तो वो घूमेगा क्या नहीं, लेकिन अपना स्थान नहीं बदलेगा वहीं रहेगा लेकिन ऐसे घूमेगा तो है ही। यदि कुछ प्रदेश घूमे और कुछ नहीं घूमे तो आत्मा के दो टुकड़े हो जाएंगे और 8 ही प्रदेश के आश्रय से सम्मेलन होगा तो आत्मा अखंड रूप से दृष्टि का विषय बनना चाहिए। या क्षेत्र की अखंडता खंडित हो गई ना फिर क्या करें कर? कितनी स्थूल बातें हैं अब कदम चल रहा है। इतने तीसरे मुद्दे उठा करके संत बन गए, महात्मा बन गए, बड़े बन गए, ये बन गए, ये हो गए, ये हो गए, वो स्वरूप समझना है तो चारों नियोग की कसौटी पे कसकर उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा वस्तु के स्वरूप कैसा है। देखो ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता और कर्मफल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है, इसलिए वह ना तो कर्मों को करता ही है और ना भोगता ही है। ये तो ऊपर की गाथा में है ना, कर्मों को शब्द पड़ा है ना, इसलिए उसकी बात टीका है ये। किंतु ज्ञान चेतनामय होने से शुभ और अशुभ कर्म बंध को और शुभ और अशुभ कर्म फल को, शुभ अशुभ आया तो पुण्य पाप आ गया ना, को मात्र जानता ही है। इनको मात्र जानता है, आत्मा को नहीं जानता ऐसा नहीं है, पर उनको जानता ही है, करता नहीं है। अब उसका जानने का भी निषेध करे तो भी गलती और जानने के साथ में करते तो थोपे तो भी गलती है? कि जानता है और करता नहीं है ऐसा होना चाहिए। देखो है ना, जिस प्रकार दृष्टि माने नेत्र, अब दृष्टि अपने दृष्टि नहीं समझ रहे हैं सम्मान दृष्टि, इसलिए कोष्टक में नेत्र लिखा, दृश्य पदार्थों को देखती ही है, नेत्र दृश्य पदार्थों को देखता ही है, उन्हें करती भोगती नहीं। उसी प्रकार ज्ञान भी अकारक और अवेदक है, और अब किसको, बंध को, मोक्ष को, कर्मोदय को, निर्जरा को मात्र जानता ही है। वहां कर्म आ गया था, अब कर्म का उदय आ गया, कर्म का बंध आ गया, कर्म से मोक्ष आ गया, कर्म से निर्जरा आ गया, अब रह गया संबर, तो संबर को भी जोड़ दो बेचारे काय को छोड़ते हो। नहीं दिखा था मैं जगह तो नहीं आई, नहीं लिखी उनने, उससे समझ गए आप। इन सब चीजों को माने नौ ही तत्वों को, सब पर पदार्थों को ये भगवान आत्मा करता और भोगता नहीं है और केवल जानता ही है। तो ये कहेगा नहीं 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 करता है तो कथनचित करता और कथनचित कि हाँ हाँ अज्ञान अवस्था में करता है, माने करता अज्ञानी है, अज्ञानी है माने करता मानना अज्ञान है, ऐसा अर्थ हुआ ना, क्योंकि वो वाले भी सच्ची होती करने की बात तो वो अज्ञानी क्यों होता, क्यों अपने अज्ञानी करता भोगता। अपन क्या समझते हैं ज्ञानी तो बेचारा चुपचाप बैठा है और अज्ञानी जाए कर देगा, हम तो अज्ञानी के पास जाएंगे उससे करवा लेंगे, क्यों तो ज्ञानी तो करते नहीं है तो ज्ञानी के पास छोड़ देंगे। ऐसे बहुत लोग हैं कि अपने भगवान तो कुछ करते नहीं है, गणेश जी के चलो गणेश जी से करवा लेंगे, अपन को क्या अपने तो काम करवाना है, ڈاکٹر صاحب سے کروا لو, ڈاکٹر صاحب بیٹ جی سے کروا لو, بیٹ نہیں تو حکیم صاحب سے کروا لو, جھاڑنے پھونکنے والوں سے کروا لو. اپنی تو بیماری ٹھیک ہونی چاہیے نا, ہمیں تو کوئی راگ دیش نہیں ہے, بس ایسے بیترانگی لوگ بہت ہو گیا ہے. ارے بھائی کرتا تو کوئی نہیں ہے, کچھ کرتا مانتے ہیں اور کچھ کرتا نہیں مانتے ہیں. سوال یہ ہے اجان اوستھا میں بھی اپنے کو کرتا مانتے ہیں تو ہم نے بھی انہیں کرتا نام دے دیا, یعنی ان نے واسطو میں کچھ کیا ہے ایسا نہیں ہے. پھر اجانی بھی کچھ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے, پر میں دے تو اپنے کو کرتا مانتے ہیں, اس مانتا کے کرتا ہیں وہ, اس لیے اجانی کو کرتا بولتے. کیا 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 کرتا ہے وہ, ایسی مانتا کے کرتا ہیں, ایسے اجان بھاو کے کرتا ہیں. ہم ایسا سمجھنے لگتے ہیں جیسے بے لوگوں کے بے کہتے ہیں کہ ہاں بھگوان کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, اور اپن کہتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ دیگمبروں کے حساب سے بھگوان مہاویر نے شادی نہیں کی, اور سیتامبروں کے حساب سے کی. اب کی کہ نہیں کی, کہتے ہیں نہیں دیگمبروں کے حساب سے نہیں کی. تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا حساب دیگمبر سیتامبر لگاتے رہنا, تمہیں ایکچوئل تو بتاؤ کہ مہاویر نے کیا کیا تھا. سمجھے نا, ایسے وہ کہتے اجانی کا اپنے اجان روپ مانتا کا کرتا ہوا, پر میں تو اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہے. تو پھر کھڑا کہتے اچھا ٹھیک ہے, پھر کون کرے گا اسے؟ اب اسے نہ مانو, کیا اس کے دماغ میں گھس گیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, جانی نہیں کرے گا, اجانی نہیں کرے گا, تو کچھ کام ہوا ہی نہیں. پرگل کا میں نے کرنے والا کوئی جیو چاہیے پرگل کے کام کو, میں نے پرگل جیسے اپنے کام کو کرنے میں بالکل اسمرتھ ہو, جبکہ وہ پرگل میں تو پرنامن سوبھاو ہے, وہ اپنے سب کام کو اپنے آپ ہی کر سکتا ہے. کیوں اب اس لیے سمسیا کریے کہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا, کون کرے گا, کون کرے گا؟ سارا اس کو اپنے ماتھے پہ لے لیا, کوئی نہیں کرے گا تو میں کروں گا. جب ہم یہاں جے پور میں آئے تھے, سچی گھٹنا ہے, 40 سال پہلے, کتنے تمہارا جنم نہیں ہوا ہوگا, گزرے گا تمہارے باپ کا بھی جنم نہیں ہوا. ایک دفعہ ہم رام نواس باغ میں گھومنے گئے, تو ہمیں چاروں بچے تھے چھوٹے چھوٹے, جب یہاں آئے تھے نا تو پرماتم پرکاش 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا, پھر 3ویں میں پڑھتا تھا, پر جو دو دو پڑھتے ہی نہیں جاتے تھے, ایسے پہلی پہلی کلاس میں پڑھتے ہوں گے ایسے تھے. تو پھر ہم کو ہر سنڈے منڈے کو تھوڑا گھومنے وومنے کہیں لے جانا پڑتا ہے, آج کل بھی لے جانا پڑتا ہے, میں سنا ہے ایسا کرنا پڑتا ہے آج کل. کیوں تو وہاں لے گئے گھومنے, تو جس ہم برنچ پہ بیٹھے تھے اس برنچ پہ ایک پین پڑا تھا, دادا یہ پین پڑا پڑا پڑے رہے, اپن اٹھ کے جائیں گے تو کوئی اٹھا لے جائے گا, کیا کریں تو اپن کریں کیا, اٹھا لے جائے تو اٹھا لے جائے گا, اپن کیا کریں اس کے لیے, نہیں نہیں کوئی اٹھا لے جائے گا. تو میں نے کہا کہ وہ اٹھا لے جائے گا تو اسے چوری کا پاپ لگے گا, تو بیچارے کو چوری کا پاپ کیوں لگے, اس لیے اپن ہی اٹھا لیتا ہے تو وہ چوری کا پاپ اپن کر لو, تو کیسے کیسی چنتا ہوتی ہے, کیا کریں. ارے بھائی جس کا ہوگا وہ لے جائے گا, دوسرا لے جائے گا, نہیں لے جائے گا, پڑا رہے گا, اور سارے جگت کے ہم کیا کریں. اب ہماری سمسیا کھڑی ہو جاتی, ارے یہ پین پڑا ہم کیا کریں, یہ کوئی سمسیا ہے؟ بالکل آرٹیفیشیل سمسیا ہے نا, اب کوئی نہیں ہے, اس پتگل کا کرتا کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں, اب کر نہیں کروں گا تو کون کرے گا, کر کسی کو کرنا ہی چاہیے, بہت پروپکاری بن جاتے, بہت ذمہ داری محسوس کرتے. ارے ایک دل میں دوسرے دل کا کرتا ہے ہی نہیں, کر سکتا ہی نہیں ہے, بجر کی دیوار پڑی ہے, یہ مہان سدھانت 24 گھنٹہ ہم سمجھتے ہیں, پھر بھی ایسا وکلپ آتا ہے نا سمے دشنی جانیوں کو بھی, ہم کو تو ایسا وکلپ آتا ہے سمے دشنی نہیں مانی, تو بھرے چکوتی ڈنڈا لے کے پڑا تھا, سمجھا رہا کہ پڑا تھا کہ نہیں پڑا, سمجھے کر کے یہ کرو تم یہ کرو یہ کرو, پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اندر مانتا کے لیول پر نہ میں کرتا ہوں نہ میں بھوکتا ہوں, میں تو ماتر جاتا ہوں, تو جانن کریا کا کرتا ہوں, کس کا, اس ہونے روپ جو کریا ہو رہا کام اس کا کرتا نہیں ہوں, اس کا بھوکتا نہیں ہوں, उन दोनों को जो जानने रूप कार्य मुझ में हो रहा है उसका मैं कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा ज्ञानी मानता है। ऐसी मान्यता का नाम ज्ञान है और इस वजह से वो ज्ञानी है।
Thank you.